ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग पे हम सब आत्माओं को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। कलयुगी जीवन और संगमयुगी जीवन का अंतर ही इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें महसूस होता है, वो है परचिंतन का जीवन और ये है आत्मचिंतन का जीवन, जिसको स्वचिंतन भी कहते हैं। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, परचिंतन पतन की जड़ है। जब से देह के अभिमान में अर्थात पर शरीर के अभिमान में आते हैं, कैसे हमारा पतन होता है, ये द्वापर युगी जीवन से लेके आज तक, जबकि हमें पहले इस जीवन का पता नहीं था, द्वापर में क्या जीवन थी या कलयुग में क्या जीवन थी, लेकिन इस लास्ट के जीवन में जब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है, संगमयुगी जीवन का महत्व पता चलता है, तब पता चलता है कि कलयुगी जीवन परचिंतन के जीवन क्या थी और संगमयुगी जीवन स्वचिंतन या आत्मचिंतन के जीवन क्या है। पहला पाठ ही हमारा आत्मा का है, दूसरा पाठ परमात्मा का है, ए फोर आत्मा, बी फोर बाबा, और अगर थर्ड में देखें तो सी फोर सर्कल। जबकि एबीसीडी के हिसाब से देखा जाए तो 26 अक्षर आते हैं, लेकिन हमारे इस ईश्वरीय ज्ञान के जीवन में ये तीन शब्द ही बहुत बड़ा जीवन का महत्व समझा देते हैं। अगर आत्मा के पहचान के बाद इस जीवन में जो कुछ भी हमारे में कमी आती है, जो कुछ भी अवगुण आते हैं, जो कुछ भी बुराइयां आती है, अगर आत्मा का चिंतन करके, आत्मा की पहचान करके उन कमियों को निकाल देते हैं, उन अवगुणों को निकाल देते हैं, तो स्वाभाविक है हमारा बाबा के साथ योग लगता है, बाबा से हमारी प्रीत हो जाती है। जबकि पहचान में आत्मा और परमात्मा की पहचान मिल जाती है, लेकिन आत्मा की पहचान के बाद परमात्मा की पहचान मिलते ही उनसे योग लग जाए, उसके लिए सबसे बड़ी बात आती है कि हम आत्मा का चिंतन कितना करते हैं, स्वचिंतन कितना करते हैं, या हम इसको ये कह सकते हैं कि हम पॉजिटिव कितना सोच पाते हैं। हमारे देह के कारण जितने भी व्यर्थ के चिंतन है, नेगेटिव चिंतन है, वो हमें परमात्मा से, बाबा से दूर ले जाते हैं। और अगर आत्म चिंतन करते हैं, स्वचिंतन करते हैं, पॉजिटिव चिंतन करते हैं, तो वो हमें बाबा से नजदीक लाते हैं। जैसे अंधेरे का मतलब है भय और रोशनी का मतलब है निर्भय। अब कोई डर नहीं है, लाइट आ गई ना, रोशनी होगी ना, अब कोई डर नहीं है। तो जैसे ही हमारे में आत्मा का ज्ञान आ जाता है, जैसे ही मन का अंधेरा दूर हो जाता है, तो दुनियावी भय तो खत्म हो ही जाता है, लेकिन भगवान से दूरी जो बनी रहती है, भगवान के प्रति जो भय बना रहता है, वो भी हमारा खत्म हो जाता है। क्योंकि भगवान कौन है, वो तो हमारा बाबा है। तो बाबा शब्द के अंदर ऑटोमेटिकली एक अपनेपन का भाव आ जाता है, बाबा शब्द के अंदर एक नजदीकी का महसूस, नजदीकी अनुभव होती है। फिर आप देखेंगे जहां बाबा शब्द आ जाता है, वहां हमारे में बाबा की सकाश आनी शुरू हो जाती है। भय खत्म हुआ, अंधेरा दूर हुआ और बाबा की रोशनी मिलने लगी, यानी सकाश मिलने लग जाती है। जब बाबा की सकाश हमें मिल जाती है, तो जो कुछ भी इस ड्रामा में, सर्कल में आज तक का पार्ट हमारा बजा, चाहे अच्छा और चाहे बुरा, वो सब स्टॉप हो जाते हैं, फुल स्टॉप लग जाता है। क्योंकि अब हम किसके बन गए, जो कुछ था पहले वो था, लेकिन अब हम किसके बन गए? बाबा के बन गए हैं। और बाबा का बन जाना माना बाप के गुण शक्तियां सर्व अधिकार के, जिसको कहे मालिक बन जाना। आप देखेंगे भक्ति के अंदर भगत भगवान से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो, और हम बाबा के बच्चे मांगते हैं। बल्कि ऐसा लगता है इस ईश्वरीय ज्ञान के जीवन के बाद कि मांगना नहीं पड़ता है, बल्कि जो हमारी आवश्यकता ही होती है वो स्वयं भगवान स्वतः पूरी कर देता है। मांगने वाले भक्तों की लिस्ट में नहीं, लेकिन अधिकारी की लिस्ट में आ जाते हैं। और उसके लिए भी बाबा ने हमें बहुत अच्छा एक तरीका बताया है, अमृत वेले का हमारा योग। हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चार सब्जेक्ट होता है। ज्ञान तो हम सब सुन लेते हैं, लेकिन ज्ञान सुनने के बाद सेवाओं के विस्तार में ज्यादा चले जाते हैं। तो ज्ञान का सब्जेक्ट आया और फिर सेवा के सब्जेक्ट पे ध्यान दिया, लेकिन योग कितना लगाते हैं? और जीवन में जो मर्यादाओं को धारण करना चाहिए, मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, वो हम कितना कर पाते हैं? अगर बीच के दो सब्जेक्ट हमारे कमजोर हो जाते हैं, तो फिर जो सेवाएं हम करते हैं उन सेवाओं में जो प्राप्ति हमें होनी चाहिए, सेवा की रिजल्ट हमें मिलने चाहिए, सेवा का जो फल हमें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हमारा पुरुषार्थ चलता है, ज्ञान को अच्छी तरह समझना और फिर रोजाना सुनना। ऐसा नहीं समझ लिया, हाँ हाँ मुझे मालूम है, मालूम नहीं, लेकिन आज बाबा ने मुरली में क्या मेरे लिए शिक्षा दी है, कितना मुझे अपने आप को आत्मा के स्वमान में टिकाना है। पहला पाठ ही आत्मा का है, आत्मा समझना और आत्मा की दृष्टि से दूसरों को देखना। मैं भी आत्मा और ये भी आत्मा, आत्मा रूप में हम कौन हो गए? भाई भाई हो गए। तो आत्मा समझ लेना, लेकिन आत्मा समझ के चलना, उसमें अंतर आ जाता है। जो आत्मा के निजी गुण हैं, वो गुणों का स्वरूप तभी होगा जब आत्मा समझकर हम चलेंगे। आत्मा को समझ लेना तो ठीक है, लेकिन समझकर चलना, जो दिन भर की हमारी दिनचर्या है, दिनचर्या के अंदर हम कितना आत्म अभिमानी होकर के चलते हैं, चाहे हम किसी को देखते हैं तो भी आत्मा की दृष्टि से, चाहे हम किसी से सुनते हैं तो भी आत्मा की दृष्टि से, चाहे हम किसी से बात करते हैं तो भी आत्मा की दृष्टि से। और ये अभ्यास सहज नहीं है, थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे मन के मुताबिक कोई बात हम किसी को सुनाते हैं, वो स्वीकार कर लेता है, तो हमारे को लगेगा ये बहुत अच्छी आत्मा है, तो उसकी आत्मा नजर आ जाएगी। और अगर हमने जो सुनाया वो सामने वाले ने स्वीकार ही नहीं किया, उस समय क्या लगेगा, ये तो बहन है ही ऐसी, ये तो भाई है ही ऐसा, उस समय हमें आत्मा नजर आई। अच्छा, आत्मा के सात गुण हैं, वो सात गुणों के स्वरूप से ही आत्मा सतो प्रधान है। चलो उस आत्मा के अंदर वो सतोगुणी अवस्था की स्टेज नहीं है, और मैं अगर उसका अभ्यास सतो प्रधान बनने का कर रही हूँ, तो उस आत्मा को उस पावरफुल दृष्टि से देखें और उसी आत्मिक भाव में स्थित होकर के अगर हम उसको बोलेंगे, तो हो सकता है उस आत्मा में भी वो सातों ही गुण इमर्ज हो जाए। उसके अंदर सतोगुणी अवस्था की स्टेज नहीं है, तो हम अपनी अवस्था से उसको सतोगुणी बनाने का प्रयास करें। लेकिन क्या होता है, हम जब ज्ञान सुनाते हैं तब वो अवस्था बन सकती है, हम योग करते हैं उस समय उस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जब हम व्यवहार में आते हैं, चाहे वो परिवार के बीच में है और चाहे सेंटर पे है, चाहे हम सेंटर पे हैं चाहे हम मधुबन में हैं, मान लीजिए मधुबन में सेवा में हमें अलग अलग ड्यूटीज मिलती है, और साथ में जो ड्यूटी वाले हैं, सेवा वाले हैं, वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम अगर हमने जैसे कहा वैसे अगर वो करें, तो हमें वो बहुत अच्छी आत्मा नजर आएगी। इस आत्मा का बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, ये आत्मा बहुत अच्छी है, इसने देखो इसको जो काम का ना ये बिल्कुल एक्यूरेसी से करती, इसका योग बड़ा अच्छा है, वो आत्मा की सारी विशेषताएं हमें नजर आने लग जाएगी। और अगर आज जिस आत्मा को हमने कहा वो हमारे हिसाब से नहीं सेवा का कार्य करती है या नहीं सुनती है या नहीं उसका अभ्यास करती है, तो फिर हमें क्या लगेगा, ये माता अच्छी नहीं है, इस माता की आदत अच्छी नहीं है, ये भाई अच्छा नहीं है, ये बहन अच्छी नहीं है। तो हमें उसके अंदर हमारी चीज को, हमारी बात को स्वीकार करने की अगर ताकत नहीं है या समझ नहीं पाए हैं या वो नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम नहीं समझेंगे, लेकिन उसकी अनेक कमजोरियां, अनेक कमियों को हम वर्णन करने लग जाएंगे। तो बाबा जो हमें कहता है कि आत्मा की स्थिति बनाना, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, और फिर आत्मा की स्थिति में स्थित होकर के बाबा को याद करके कार्य करना, तो एक है आत्मा का अभ्यास, दूसरा जितना जितना आत्मा का अभ्यास करेंगे उतना बाबा की याद आएगी, और जो बाबा की याद में रह के हम कार्य करेंगे, चाहे वो स्थूल कार्य है और चाहे सूक्ष्म कार्य है। बाबा तो कई बार हमें ये भी कहता है कि भाषण करने वाले और बासन मांजने वाले दोनों को एक समान नंबर मिल सकता है, पर कब, जब हम आत्मा की स्थिति में स्थित होकर के और बाबा को याद करके करते हैं कि देखो ये बर्तन की सफाई हो रही है, इसका कचरा गंद धुल रहा है, साफ हो रहा है, बाबा तो मुझे आत्मा को भी धो रहा है, मेरी भी सफाई कर रहा है, मेरा भी कचरा निकाल रहा है, और हम कितने चमकदार बन रहे हैं, एकदम सतोगुणी बन रहे हैं, सोने तुल्य बन रहे हैं। ये तो चलो स्टील के करके बर्तन होंगे, शीशे के होंगे, प्लास्टिक के होंगे, आत्मा तो एकदम गोल्डन बन जाएगी, गोल्डन दुनिया में चली जाएगी। अगर हम कोई भी चीज को अगर आत्मिक स्थिति का अभ्यास और बाबा की याद में रखे करेंगे तो उस कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपने शरीर में भी उसकी थकावट का अभ्यास प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि आत्मिक अभ्यास से ऐसे लगेगा। बहुत सारी ऐसी माताएं हैं अकेली घर में रहती है और वो अभ्यास करती है और कहती है ऐसे लगता है जैसे बाबा ने ही आकर के मेरे बर्तन धुलवा दिए, बाबा ने ही आकर के मेरे कपड़े धुलाई करवा दिए, बाबा ने ही घर की सफाई करा दी। अभी वो रोज ही काम करती है, अकेली ही करती है, चाहे वो सेंटर की बहने हैं और चाहे घर में रहने वाली माता है, लेकिन वही कार्य रोज हम करते हैं वो भारी महसूस हो और एक दिन हमें बहुत हल्का लगे, या रोज हमें हल्कापन लगे और एक दिन विशेष भारी लगे। कारण फिर कई बार कहते हैं आज तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत का भी जो कारण होता है वो मन की स्थिति का प्रभाव भी होता है। हो सकता है कार्य का बर्डन ज्यादा हो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हमारे मन की स्थिति का प्रभाव हमारे शरीर पे और हमारी सेवा के कार्य पे भी जरूर पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है कि आत्मा की स्थिति और बाबा की याद। अब उसके साथ साथ में हमें ड्रामा के ऊपर भी अपने आप को दृढ़ रखना चाहिए। कई बार ऐसी आत्माओं का संग मिल जाता है जिससे हमारे साथ कोई न कोई कमजोरी, नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं, जिसके कारण चाहे मधुबन में आ जाए ना तो भी उनका काम यही होगा, उसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, उनके पास बहुत सारा मसाला मिल जाएगा। मधुबन से जाएंगे तो क्या अनुभव किया, हाँ बस ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, वैसे तो मधुबन ही है पर वहां पर भी सब प्रकार के लोग हैं। इसका मतलब हमने वहां से क्या लिया, क्या लिया, क्योंकि जो आत्मा ने अपने अंदर पात्रता का गुण धारण किया है, चाहे वो नेगेटिव और चाहे पॉजिटिव, उसको वैसा ही मिलता है। हमें तो 45 वर्ष हो गए, कभी ऐसा कोई संग मिला ही नहीं जो कोई ऐसी नेगेटिव बात बोले या कोई नेगेटिव प्रभाव डाले या मन की स्थिति को नेगेटिव यानी गिरावट में लाए। बड़ी दादियों का संग मिला, दीदियों का संग मिला, बड़े भाइयों का संग मिला, और हरेक से कोई न कोई, हर बार आओ तो कोई नई चीज मिलती है, और यहाँ से जाओ तो इतना उमंग, इतना उत्साह, इतनी खुशी, और वहाँ जाओ तो सेवाओं में और चार चांद लग जाते हैं। फिर कोई न कोई कारण से कोई न कोई सेवा के कार्य अर्थ फिर आना हो जाता है, फिर यहाँ से भर के चले जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ना मधुबन आना माना बैटरी को चार्ज करना, और सचमुच में ऐसे लगता है जैसे हम चार्ज होके जा रहे हैं। चाहे क्लास किसी की भी हम करते हैं तो भी ऐसे लगता है आत्मा की बैटरी जैसे चार्ज हो गई है। लेकिन वो आत्मा के स्वरूप का अभ्यास दिन भर चलता है तो वो चार्ज का महसूस होता है। और अगर आत्मा की स्थिति का अभ्यास नहीं है, उसने क्या पहना है, उसने क्या लगाया है, उसने क्या किया है, उसके पास पर्स कैसा है, उसके पास स्वेटर कैसा है, उसके पास कपड़े कैसे हैं, अगर कहीं न कहीं बाहरी चीजों में हमारा ध्यान चला जाता है, उससे क्या होता है कि भरने वाले हमें भर रहे हैं और हमारा धीरे धीरे उसमें सुबह से लेकर शाम तक जो भरा, रात तक वो सारा खाली, फिर अगले दिन लगेगा आज तो कुछ हल्कापन नहीं लग रहा है, भारी भारी लग रहा है। तो उस भारीपन का कारण भी हमारे अपने मन की स्थिति पे ही होता है। हम 63 जन्मों का हिसाब किताब यहाँ चुकतू करने के लिए आए हैं, और ना केवल 63 जन्मों का चुकतू करने के लिए आए हैं, लेकिन हम साथ में 21 जन्मों का जमा भी करने के लिए आए हैं। कितना हमारा जमा हो रहा है, हमें दीदियों से दादियों से इतनी पालना मिलती है, स्थूल में भी कितना खाने पीने का रहने का हमारा ध्यान रखा जाता है, फिर सूक्ष्म में हमारे ज्ञान योग की धारणाओं की क्लासेज के लिए कितना हमारे पे अटेंशन दिया जाता है। अगर उसके हिसाब से बैलेंस में हमारी स्थिति पॉजिटिव चल रही है तो समझो हम 21 जन्मों के लिए जमा कर रहे हैं। और हमने योग लगाया थोड़ा बहुत और सेवा की, स्थिति बनाई, और फिर नेगेटिव में अपनी स्थिति में कुछ न कुछ कचरा भर लिया, तो फिर बैलेंस कहाँ रहेगा। 63 जन्मों का खत्म और 21 जन्मों का जमा हो सकेगा? नहीं। इसलिए बाबा ने संगमयुगी जीवन के अंदर हमारे ये चार सब्जेक्ट हमें दिए हैं, ज्ञान योग धारणा और सेवा। इसलिए एक्स्ट्रा योग भी हम मधुबन आकर के करते हैं, और ना केवल मधुबन के ही योग से काम चलता है, लेकिन मधुबन में योग लगा करके जो स्थिति और अवस्था बना के जाते हैं, फिर हम अपने सेंटर्स पे या जहाँ जिसका स्थान है रहने का, बाबा ने जहाँ जिसको रखा है, चाहे वो घर पे और चाहे सेंटर पे, अगर वो दिनचर्या हमारी सेंटर पे भी चलती है, घर पे भी चलती है, तो हम उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। नहीं तो गए, जैसे आज भी हम सुन रहे थे कि भाई हमने मधुबन में आए तो यहाँ पांडव भवन ने खूब भरा, फिर ज्ञान सरोवर में गए तो थोड़ा सा हल्का हुआ, फिर शांतिवन गए तो फिर अवस्था नीचे आई, और अगर स्टेशन तक पहुंच गए तो इन्होंने तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों ही युगों का वर्णन करके बता दिया था। लेकिन अगर इन अवस्थाओं में अगर गहराई में हम जाएं, तो मैंने ये अनुभव करके देखा है कि अगर मधुबन में पांडव भवन में आकर के जिसने अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया, वो स्टेशन तो क्या, अपने सेवा स्थानों पर भी वो कायम हम रख सकते हैं। और यही एक छाप है, इसी जगह पे हम लोग जब शुरू शुरू में दादियों से बाबा से मिलकर के जाते थे तो हमें याद आता है 7-8 दादियां यहाँ सामने बैठती थी, और गो सुम कम सुम की टोली देना, सौगात देना, फल देना, दृष्टि देना, यानी टोली देना, सबका अलग 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 होता था। एक से मिलते थे, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, दृष्टि लेते रहते, आंखों में से आंसू बहते रहते, और इतना प्रेम का स्वरूप बन जाता था कि वो आज भी भूलता नहीं है। बाबा से भी अगर मिलन मनाते तो कितनी कितनी देर तक ऐसे पर्सनल खड़े होकर के मिलना, और वो सकाश, वो दृष्टि, वो बाबा के वरदान एकदम जैसे भर जाते थे, वो आज तक भी याद है और अभी भी वो साथ है। कोई कहते हैं ज्ञान में चलने के बाद जो शुरू शुरू में नशा होता है, वो जो उमंग होता है, खुशी होती है, वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, हल्की हो जाती है। मुझे तो लगता है उसको ज्यादा से ज्यादा सींच करके हमें फलीभूत बनाना चाहिए। कोई भी एक आम का पेड़ होता है या कोई भी पेड़ होता है, वो शुरू में कमजोर हो सकता है, उसको एक लाठी के डंडे के सहारे उसको खड़ा कर देते हैं, लेकिन जब वो मजबूत हो जाता है वो लाठी का सहारा हटा दिया जाता है और वो फलदायक वृक्ष बन जाता है। ऐसे हमारे ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी के जीवन समय बीतने के बाद, वर्ष पे वर्ष बीतने के बाद बड़ा वृक्ष, फलदायक वृक्ष जीवन बनना चाहिए या कमजोर और हल्का होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, फलदायक होना चाहिए। इसलिए हल्की जीवन नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिन प्रतिदिन हमारे पुरुषार्थ की स्थिति कहो, स्पीड कहो, अवस्था कहो, और ही मजबूत होनी चाहिए। और वो सचमुच में मजबूत बनी रहे, उसके लिए आज भी हमारी दादियां, हमारी दीदियां हमारी पालना करती रहती है। जैसे कोई भी बड़े से बड़ा वृक्ष भी क्यों ना हो, लेकिन उसको भी हवा और पानी तो अवश्य चाहिए। ऐसे हमें यहाँ आने से हल्का फुल्का, हवा का मतलब हल्का फुल्का, जो भी बोझ है वो सब हमारे हट जाते हैं, हम हल्के हो जाते हैं। और पानी का मतलब सिंचाई, तो यानी जो नई नई तरीके की पॉइंट हमें मिलती है फिर पुरुषार्थ को और अच्छा रफ्तार वाला बनाने के लिए, तो ये पानी तो है। लेकिन उसके साथ साथ में कोई भी वृक्ष, पानी और हवा, लेकिन उसके साथ साथ उसको धूप भी चाहिए, सूर्य की किरणें भी चाहिए। कई ऐसे हैं जो सूरज के सामने भी नहीं रखते ना, तब भी उसको सनलाइट तो जरूर चाहिए। और यहां देखें तो हमें हल्का होने के लिए भी पुरुषार्थ कराया जाता है, ज्ञान से छींचने के लिए नई नई तरीके की पॉइंट्स भी हमें दी जाती है, लेकिन फिर हम बैठ करके जो घंटों घंटों यहाँ तपस्या करते हैं, बाबा के साथ योग लगाते हैं, उसकी जो किरणें मिलती है वो ऐसा हमारा जीवन फलीभूत बना देते हैं बाबा, जो कभी भी हम कैसी भी परिस्थिति में हिल नहीं सकते, तगमगा नहीं सकते। अगर एक संकल्प भी आता है तो वो भी एक आत्मा जरूर कहीं न कहीं, जिसको कहें अपनी ही कमजोरी के कारण हिलती है, वरना हिल नहीं सकती। और अगर इस ज्ञान में आने के बाद कोई भी आत्मा जो एक रस रफ्तार से चलती है, जो कभी कमजोरी का संकल्प मात्र भी नहीं आती है आता है, वो आत्मा को समझो भगवान का विशेष वरदान ही कहेंगे। हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि कभी ये नहीं सोचा यहाँ ऐसा भी होता है क्या, यहाँ ऐसा भी करते हैं क्या। किसी को देख करके, किसी की बात सुन करके, पहली बात तो कोई सुनाता ही नहीं है, दूसरा हम किसी को देखते ही नहीं है। एक देखना है तो बाबा को, या आज अगर साकार में है तो हमारी दादियों को। आज भी आप देखो हमारी दादी जानकी जी कितने वर्ष की हो गए। मैं अपने पुरुषार्थ में हमेशा रखती हूँ, दादी मुझसे 40 वर्ष बड़े हैं, अभी तो मुझे 40 साल और ऐसा पुरुषार्थ करना है। आप सोचो कि अगर हम ऐसे उनको सामने रखते हैं, वो अमृत वेले का योग कैसे करते हैं, वो देखो मुरली की क्लास को कितना लगन से सुनते हैं, वो देखो कितनी अच्छी अपने जीवन की मर्यादाएं और धारणाओं को मजबूत बना के चल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं चल सकते हैं? हम कमजोर वालों को क्यों देखें, मजबूत वालों को क्यों नहीं देखते हैं? होशियार को देखना चाहिए या कमजोर को देखना चाहिए? आगे चलने वालों को देखना चाहिए या पीछे रुकने वालों को देखना चाहिए? आपको पता है कई बार ऐसे बड़े सुनाते पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ना माना डर है, पीछे मुड़ना माना भूत है, पीछे मुड़ना माना अशुभ है। तो हम कमजोर आत्माओं को अगर देखते हैं और कमजोर आत्माओं को अगर सामने रख करके चलते हैं, तो इसका मतलब हमारे साथ दैवी गुण आएंगे या भूतों वाले गुण आएंगे, हमारे जीवन में भय रहेगा या निर्भय बनेंगे। इसलिए सदा हमें अपने को देखना है और अपने से आगे वालों को देखना है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है सी फादर फॉलो फादर। अपने सामने एग्जाम्पल भी अगर रखना है तो या तो बाबा को या मम्मा को। हम कहेंगे अब तो बाबा और मम्मा साकार में नहीं है, तो आज भी हमारे सामने हमारी बड़ी दादियां हैं, दीदियां हैं, जिनका आप देखो मधुबन में रहने वाले कितना निरंतर हर रोज अलर्ट रहते हैं। भोजन बनाने वाले देखो अपने टाइम पे बनाते हैं, चाय बनाने वाले देखो अपने टाइम पे बनाते हैं, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। कई बार कह देते अब तो सर्दी है उठा नहीं जाता है, लेकिन उन्होंने कभी कहा है चाय बनाने वालों ने कि अब सर्दी है थोड़ा ठहर के चाय बनाएंगे? भोजन बनाने वालों ने कभी कहा है कि आज सुबह 6 बजे नाश्ता नहीं बनाएंगे, 10 बजे एक ही बार बनाएंगे? तो जब वो अपनी दिनचर्या में एक्यूरेट है, अलर्ट है, एक्यूरेसी से कर रहे हैं, तो हम अपने बाकी के पुरुषार्थ को क्यों नहीं एक्यूरेट करते? क्यों नहीं हम अपनी दिनचर्या में अलर्ट होकर के चलते? इसलिए बाबा ने हमें दिनचर्या को सेट करने के लिए भी एक विशेष अटेंशन दिलवाया है कि कुछ भी हो जाए, सोने की दिनचर्या, खाने की दिनचर्या, चलने की दिनचर्या, बैठने की, एक मुरली के अंदर बाबा ने कहा उठो तो उठते ही क्या सोचो, मैं आत्मा ब्रह्म लोक से अवतरित हुई हूं, अवतरित आत्मा हूं। आप सोचो अवतार जितने भी संसार के अंदर हुए हैं उनका कितना गायन है, कितना गायन है उनका। आज भी आप देखो जितने 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए जो गायन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो कौन थे? हमारे में से तो थे, और अगर हमारे में से थे तो मेरे नंबर उसमें कौन सा है? 33 करोड़ में से ऐसी 8 आत्माएं जो पास विद ऑनर थी, फिर 100 आत्माएं और जो उनके साथ राजा महाराजा थे, और फिर 16,000 भी थे, फिर 9,00,000 आत्माएं, फिर 33 करोड़ आत्माएं। मेरा नंबर कौन से में है? कौन से में है? हरेक हम सोच सकते हैं ना अपने आप को। अब हम ये कहेंगे कि हमारे में ये कमजोरी है इसलिए मेरा नंबर तो 33 करोड़ में आएगा, तो जब पहले ही सोच लिया तो पुरुषार्थ तो खत्म हो जाता है। और अगर हम 8 पास विद ऑनर वाली आत्माओं को सामने रख करके और अगर पुरुषार्थ करते हैं तो फिर हमारा पुरुषार्थ अवश्य ही पहले नंबर में 8 वालों में नहीं तो 100 में तो आ ही जाएगा। इसलिए इससे ज्यादा अपने आप को कमजोर बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये फैसला हमारे हाथ में नहीं है। हमारा लक्ष्य हमारे हाथ में है, हमारा पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, रिजल्ट किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में या ड्रामा के हाथ में। अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि पहले नंबर वाला मेरा जो कार्य है पुरुषार्थ वाला, वो हम छोड़ के पहले ड्रामा पे रख लेंगे तीसरे नंबर वाले पे, तो भी हमारा पुरुषार्थ सबसे हल्का हो जाएगा। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि जो ड्रामा में होगा सो हो जाएगा, ड्रामा को नहीं, लेकिन हमें अपने आप के बारे में सोचना है कि मुझे अपने पुरुषार्थ को अच्छे से अच्छा करके दिखाना ही है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें साथ ऐसा नहीं मिलता है, यानी जिसको कहें संगठन ऐसा नहीं मिलता है। संगठन को भी हमने अनुभव करके देखा है कि संगठन बनाना पड़ता है। पहला साथ तो हमारा बाबा है, और बाबा के साथ अगर हमने रख करके पुरुषार्थ चालू किया, और जिस आत्मा के हम साथ रहते हैं उसको भी आत्मिक दृष्टि देके उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना शुरू किया, आपके प्रति उसका भाव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा। आप कहते हैं ऐसा नहीं है, वो नेगेटिव करते हैं हम पॉजिटिव करते हैं, वो एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, उसके बाद वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन हम 10 तक जिसको के पेशेंस रखें, तो धीरज रखें, तो हम तो 1 बार 2 बार और 3 बार बस देख लिया, अब ये नहीं बदलेंगे, तो हम क्या करते हैं? हताश होकर उसको छोड़ देते हैं। छोड़े नहीं, बल्कि जो कार्य दूसरा कोई नहीं कर सकता है वो मुझे करना है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। अगर हम ऐसा लक्ष्य रख करके चलते हैं तो हमारा पुरुषार्थ खुद का तो होता ही होता है, लेकिन हम दूसरी आत्माओं का भी पुरुषार्थ सही करा देते हैं। जैसे मान लो हम रूम में हैं, कोई एक नहीं उठता है और दूसरा अगर नियम प्रमाण उठता है तो उसको भी लगेगा ना कि ये रोज उठते हैं और मैं नहीं उठता हूं, तो भाई मुझे तो उठना ही चाहिए, अच्छा नहीं लगता। चलो उसको शर्म आएगी या उसको भय लगेगा या कुछ भी कहो, और लेकिन हम ये सोच लेंगे ये भी तो नहीं उठा है, दो दिन तो मैंने देख लिया, अब आज कौन देखेगा, छोड़ो मैं भी सो जाऊं। तो फिर पुरुषार्थ कमजोर वाला रहेगा या अच्छे वाला होगा? इसलिए हम किसी को नहीं देखें, हम अपने आप को देख करके पुरुषार्थ अपना निरंतर बनाए रखें। इसलिए ज्ञान समझ लिया पर लेकिन ज्ञान के ऊपर चलना, जिसको कहते हैं ज्ञान का स्वरूप बनना, योग सीख लिया लेकिन निरंतर योगी बनकर के रहना, योग युक्त होकर के चलना। बैठ करके हम योग लगाते हैं, वो एक घंटा सुबह कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, दिन में समय निकाल लेंगे, बीच बीच में निकाल लेंगे, लेकिन केवल हमें योग लगाने वाला नहीं लेकिन योगी जीवन वाला बनना है, निरंतर योगी बनना है, तो उसके लिए तो अभ्यास की आवश्यकता है, आत्मिक की स्थिति और बाबा की याद। उसके लिए बाबा ने बहुत एक सरल उपाय हम सबको बता दिया, तरीका समझा दिया, हर घंटे के बाद एक मिनट मुझे साइलेंस में रहना ही रहना है। अगर वो अभ्यास जिनका चल रहा है जब से बाबा ने कहा, जरूर है मेरा अनुभव ये कहता है कि उनकी योग की याद की अवस्था जो है वो आगे बढ़ी है। उसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका, एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें हर घंटे के बाद वो घंटे बजा देती है, पहले ट्यून सी बजेगी फिर घंटा बजेगा। आप कितने भी काम में बिजी हो, जहां घर के मेन स्थान पे अगर वो घड़ी लगी हुई है और वो घंटे बजा रही है और आपके कान में ना पड़े, ऐसा हो सकता है? वो तो बजेंगे ना। अब वो बज रही है, आप जरूरी काम कर रहे हो, गैस पे भी कर रहे हो, अगर उसका बंद करके अगर आपने योग कर लिया एक मिनट, तो एक घंटे तक उसका प्रभाव जरूर रहेगा, अगले घंटे फिर वो बजेगी, तीसरे घंटे फिर वो बजेगी। उसने अटेंशन दिलवाया और अब जैसे जैसे वो अभ्यास हमारा बनता गया बनता गया बनता गया, अब वो घड़ी नहीं भी बजती है ना तो भी वो ऑटोमेटिकली लगता है टाइम हो गया, चलो अभी एक बार बाबा को याद कर लेते हैं। दादी गुलजार ने एक बार बहुत अच्छा बताया कि हम कितनी बार कोई भी चीज, चाहे वो खाने की है चाहे वो पीने की है, यहाँ हाथ कितनी बार जाता है सुबह से शाम तक, कभी पानी पी रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं या फल खा रहे हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं, यहाँ हाथ कितनी बार जाता है? जब भी आप कोई चीज ले ओ और बैठो, यहाँ शुरू करो, उससे पहले एक बार बाबा को याद कर लो। दिन में कितनी बार हो जाएगा? मुझे लगता है घंटे बाद तो कुछ न कुछ ले ही लेते होंगे, नहीं तो चलो दो घंटे बाद समझ लो। तो अभ्यास जिसको करना है वो कर सकता है। फिर आप देखेंगे, आप बहने माताएं जो भी कोई काम करते हैं, एक काम करेंगे झाड़ू लगाने का, फिर दूसरा करेंगे पोछा लगाने का, तीसरा करेंगे कपड़े धुलाई का, चौथा करेंगे बर्तन साफ करने का, या आप खाना बनाने का, सब्जी बनाने का, एक काम शुरू करने से पहले पहले 5 मिनट बाबा को याद कर लो। वो काम जब तक करेंगे आपको याद की स्थिति बनी रहेगी, दूसरा जब शुरू करो तो फिर बाबा को याद कर लो। ऐसे भाई लोग हैं ऑफिस में काम करते हैं, एक फाइल का काम करते हैं, दूसरी फाइल का काम करते हैं, जो व्यापारी उनके पास ग्राहक आते हैं, एक ग्राहक आया बाबा को याद किया, फिर दूसरा आया, फिर एक बार बाबा को याद कर लिया, ये भी आत्मा है बाबा, देखो ये भी आपका बच्चा है, ये आया है इसको संतुष्ट करके मुझे भेजना है। आप ऐसे बाबा को याद करें, युक्ति अगर हम निकालते हैं तो मैंने अनुभव करके देखा है कि हमारी याद की स्थिति बहुत अच्छी बन सकती है। और वो जो याद की अवस्था है ना, वो दैवी गुणों की धारणा कराती है, कहां सहनशील बनना चाहिए, कहां मधुर बनना चाहिए, कहां गंभीर होना चाहिए, कहां रमणीक होना चाहिए, कहां अंतर्मुखी होना चाहिए, कहां किससे बात करनी है तो किस किस विधि से, किस रीति से ये आत्मा संतुष्ट रहे, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वो सारे युक्तियां सारे गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जब याद में रह के हम करते हैं तब। आज बहुत अच्छी बात सचिन भाई जी ने कहा कि हम अभ्यास करते हैं अंतर्मुखता का, चुप रहने का, लेकिन सामने वाला इतना बोल रहा है इतना बोल रहा है और हम लोग चुप रह ही नहीं पाते हैं क्योंकि मन तो हमारा भूल जाता है। असल में उन्होंने कहा सुनने का अभ्यास ज्यादा करें, और जब सुनने के लिए वो पेशेंस होगा, वो धीरज होगी, वो सुनने की क्षमता होगी, तो सुनने वाला ज्यादा सुनेगा तो अपने आप बोलेगा कम। इसलिए आप देखो कान हमारे दो हैं और मुख हमारा एक है, सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। हम क्या करते हैं, सुनते कम है, हाँ ठीक है ठीक है, फिर बोल लेते हैं ज्यादा। जब सामने वाला बोल रहा है और हम सुन नहीं पाते हैं, हम जो सुनाएंगे वो सामने वाले सुनेंगे। मान लीजिए परिवार है तो परिवार में कोई छोटे भी है आपसे, कोई बड़े भी है, आजकल छोटों को भी अगर आप कुछ सुनाएंगे ना वो नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन जब हम बाबा के बच्चे, पुरुषार्थ करने वाले बच्चे अगर अपने को अंतर्मुखी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सुने ज्यादा लेकिन बोले कम, ये अभ्यास ऑटोमेटिकली अंतर्मुखी हमें बनाएगा। दैवी गुणों की धारणा ही हमें दैवी जीवन प्राप्त करा सकती है। हम कह देते हैं कि हमारा लक्ष्य है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसा बनने का, लेकिन लक्षण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण, किताब के पीछे प्रदर्शनी की किताब के पीछे 8 ही गुण है, 8 गुणों को ही धारण कर लें। फिर हमारे 8 शक्तियां बताते हैं कोर्स में, वो 8 शक्तियां ही धारण कर लें, और 8 गुण और 8 शक्ति को अगर हमें धारण करना है ना तो बाबा से जो 8 संबंध हमारे हैं उन संबंधों का हम अनुभव करें, वो अभ्यास करें। माता पिता, बंधु सखा, टीचर सतगुरु, साजन और बच्चा, ये 8 संबंध है। एक एक संबंध का हम विशेष रूप से अभ्यास करें, अनुभव करें, और वो अनुभव ऑटोमेटिकली हमारे में, जैसे माँ के सामने कितना भी बच्चा कैसे भी कुछ करता है तो वो क्या करती है, सब संभाल लेती है, कोई बात नहीं बच्चा है ना, कोई बात नहीं बच्चा है ना। आप बाबा का बच्चा बन जाओ लेकिन साथ में बाबा को भी अपना बच्चा बना लो, बाबा ये अभ्यास कराता है। अब ये देखो बाबा बच्चा बनता है क्या करता है, यानी मात्र भाव, बड़े रूप का भाव, बच्चा बना माना वो छोटा और हम हो गए बड़े, तो यानी वो विशाल हृदय बनाने के लिए हमें कहता है। वो बच्चा बन के क्या करेगा, उसको क्या चाहिए, उसको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारा हृदय इतना बड़ा हो जाए, विशाल हो जाए कि छोटी मोटी कोई भी बात किसी भी आत्मा की हो सब समा जाए। जब ऐसे गुणों से संपन्न हम बन जाते हैं तो सेवा तो ऑटोमेटिकली बन हो जाएगी। आप किसी की बात को समा गए, शांत रहे, उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचा, उसके लिए व्यर्थ नहीं बोला, उसके लिए व्यर्थ वातावरण नहीं बनाया, वो आत्मा तो आप पे वैसे ही प्रभावित हो जाएगी। आप कहेंगे कि आज का टाइम नहीं है कि वो प्रभावित हो जाए, एकदम नेगेटिव सोच वाली आत्माएं हैं जिनके आप साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना अभ्यास उन आत्माओं की वजह से छोड़ें क्यों, अगर वो नेगेटिव है और उनका प्रभाव ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन हमारे साथ कौन है, हम कौन है, हम किसके हैं, हम तो सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा है, तो सर्वशक्तिमान आत्मा के आगे नेगेटिव वाले उल्टे प्रभाव वाले हमारे से पावरफुल होंगे या कमजोर ही होंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि आपके साथ दाता है तो आप दाता के बच्चे हो, आपकी अवस्था बाप समान होनी चाहिए, विशाल होनी चाहिए, महान होनी चाहिए, तब ही हम जाकर के अन्य आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो सेवा का सब्जेक्ट हमारा चौथे नंबर पे आता है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान रोज सुनते हैं, पर ज्ञान का स्वरूप यानी मनन चिंतन करके अपने आप के ऊपर लागू करें। आज बाबा ने मुझे क्या कहा है, आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। हम मुरली सुने या सुनाए और उससे मैं कहें देखा आज बाबा ने तेरे लिए ये बात कही है, ऐसे फट हमारा इशारा दूसरे की तरफ चला जाए। इसका मतलब मैं तो साफ हूं, मुझे तो कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन आज बाबा ने मुझे क्या कहा है। अगर ऐसा कहा है इसका मतलब हम उसके लिए ठीक करना चाहते हैं, वो ठीक हो जाएगा और मेरे में कमजोरी बढ़ जाएगी। लेकिन आज मुझे क्या कहा है बाबा ने, तो हम अपने आप को चेंज करते जाएंगे, अपने आप को परिवर्तन करते जाएंगे। और वैसे भी आप देखेंगे संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे एक व्यक्ति में 10 कमजोरी है, 10 अवगुण है, 10 बुराई है, पर एक तो कोई विशेषता होगी भी सही। हम अपने पुरुषार्थ में अगर सामने वाली आत्मा की एक विशेषता है, 10 अवगुण के साथ एक गुण है, अगर एक के एक गुण अपनाया, दूसरे का दूसरा एक गुण अपनाया, तीसरे का एक गुण अपनाया, चौथे का एक, 10 लोगों के साथ में रही और 10 की 10 विशेषताएं मैंने देखी, उसका मैंने चिंतन किया, उसका मैंने अभ्यास किया, अगर वो ऐसा कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती, वो अगर ऐसा कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती, इसका मतलब मेरे में कितने गुण आ गए, 10 आ गए ना। और अगर एक एक अवगुण में 10 का चिंतन करूं और सारा दिन उसी का ही वर्णन करूं तो कितने अवगुण आ जाएंगे, 10 तो गिनती में ही रहेंगे, उसके साथ और बहुत सारे आ जाएंगे। इसलिए एक संकल्प पक्का कर लें आज से कि कोई भी आत्मा कैसी भी क्यों ना हो, पर मुझे उसके अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको देखो। चाहे हम मधुबन में भी आते ना, साथ में रहने वाले की भी कोई एक विशेषता तो जरूर होगी, कोई एक विशेषता, चाहे वो अनजान ही आत्मा क्यों ना हो। मान लीजिए आप दो जगह से आए, सेवाधारी दो इकट्ठे रहे, एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन फिर बाद में कहेंगे हाँ ये वैसे मेरे संस्कारों जैसी है। अब वो कमजोर वाले संस्कार थे आपके या अच्छे वाले थे वो तो पता नहीं भाई, लेकिन आपने उसकी अच्छाई को अगर देखा तो आप महसूस करेंगे कि आप में ये जो कमजोरी थी ना, उसके साथ रहने से मेरी चेंज हो गई, उसके साथ रहने से मेरी परिवर्तन हो गई। तो साथ का प्रभाव नेगेटिव ना पड़े, साथ का प्रभाव भी हमारे में पॉजिटिव रहे, उसके लिए हर एक आत्मा का कोई न गुण, कोई न कोई विशेषता को अगर हम देखेंगे तो हम विशेष आत्मा अवश्य बन जाएंगे। और विशेष आत्मा बनेंगे तब हम विशेष की लिस्ट में आएंगे, जो अष्टरतन बाबा कहता है या 108 की माला कहता है, वो तब ही आ सकते हैं जब हम विशेषताओं को देखेंगे, विशेषता वर्णन करेंगे और विशेषताओं को ही जीवन में धारण करेंगे। नहीं तो देवी देवता तो बनेंगे। अब 33 करोड़ में से आपको नाम मालूम है कि कौन कौन से 33 करोड़ थे, कौन कौन से 33 करोड़ थे, फिर तो वो तो अनगिनत वालों में आ गए ना। इसलिए हम सब देवी देवता बनने वाले तो हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज देखना कौन सी देवी बनेंगे, कौन से देवता बनेंगे। जिसको बाबा कई बार ये भी कहता है कि ऐसे भी देवी और देवता है जो दिन में उनके कई बार मंडप खुलते हैं, उनको नहलाया जाता है, भोग लगाया जाता है, उनकी आरती की जाती है विधिवत तरीके से, और जो उनका आरती भोग लगाना, आरती करना, उनके पट को संभालना करना, उसके लिए भी विशेष ही पुजारी होते हैं। और ऐसे भी देवी और देवता हैं जिनको साल में एक बार देखा जाता है, जैसे वो शीतला माता होती है ना, उसको साल में एक बार बासी भोजन बना के पहले दिन ही बना के रख देंगे और उसका भोग लगा के आ जाएंगे और रख देंगे, वहां कोई पुजारी भी नहीं होता है। अब बताओ ऐसे भी, इसका मतलब इतना आलस्य होगा उस आत्मा के अंदर, बाबा का भी होंगे, बच्चे भी बने होंगे, सेवा भी की होगी, लेकिन उसकी अपनी विधि है। अब उसकी भी विशेषता एक है कि वो शीतल है, शीतला नाम तो है उसका, शीतला नाम तो है ना, चलो एक सबसे बड़ी बात है कि ओम शांति में आए और शीतलता का गुण धारण किया और शीतल रहे। पुरुषार्थ में भी हो सकता है ठंडे ही रहे होंगे बेचारे, इसलिए उनको ठंडा भोजन मिलता होगा, लेकिन शीतला का गुण तो है शीतलता का, है ना। और अगर शीतलता का गुण ही हमारे में आ जाए, एक किसी भी नेगेटिव बात का जवाब ही ना दे, शांत रहे, शीतल रहे, सरल रहे, तो ये गुण कोई हमारे में कम नहीं है। इसलिए मैंने क्यों ये बात कही है कि कितने भी किसी आत्मा में अवगुण क्यों ना हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि आप कुछ भी दो बात, चार बात, छह बात कहो और वो चुप रहता है, शांत रहता है, आपको जवाब नहीं देता है, और फिर उसके बाद और सारे काम कर लेता है, किसी एक काम के लिए वो शांत हो जाता है, नहीं कर पाता है, तो आप क्या कहेंगे, चलो कोई नहीं, काम धीरे धीरे कर लिया, पर जवाब तो नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, ये कम है क्या? आजकल जवाब देने में तो सब पहले होशियार होते। तो हम हर आत्मा का विशेषता, गुण, अच्छाई अगर इसको अपने अंदर लाते हैं तो हम एक दिन अच्छे से अच्छे बन सकते हैं, अपने में विशेषताओं को भर के संपन्न बन सकते हैं, जिसको बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न। और जो गुणों में संपन्न होता है वो कलाओं में भी निपुण हो जाता है, क्योंकि वो फालतू व्यर्थ नहीं ना सोचता है और ना बोलता है, ना कोई ऐसी संगति में बैठता है, तो उसने कोई न कोई अपने को बिजी करने का तरीका, कार्य भी संभाल लेता है, यानी उसकी कलाएं भी बढ़ जाती है। फिर वो आत्मा जब कलाओं से संपन्न बनता है तो उसके अंदर के सूक्ष्म में जो विकार है, जो बाबा हमें कहते हैं ना, मोटे मोटे पांच विकार तो हम जीत लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे बाबा के बच्चे हैं तो वो ब्रह्मचारी भी रहते हैं, कोई ऐसा कर्म उनसे होता है, नहीं हो सकता होगा। और क्रोध में भी ऐसा नहीं है कि जैसे दुनिया के लोग इतने क्रोधी होते हैं ऐसे हम क्रोधी बन जाएंगे, शांत भी रहेंगे, लेकिन सूक्ष्म में जो हमारे में है उन सूक्ष्म को भी हम निकाल करके एकदम संपन्न बन जाएं, उसके लिए हम बाबा से सकाश लेते हैं, बाबा को याद करते हैं और बाबा समान बन जाते हैं। ओम शांति।